ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि दोनों देशों के पास डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं।
मेरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक्सेलेंसी, हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। एक्सेलेंसी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
भारत और पराग्वे संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों में साझा हितों के मामलों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर पी कुमारन ने कहा कि दोनों देश डिजिटलीकरण, आईसीटी और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री कुमारन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए पराग्वे की सराहना की।
This visit comes soon after the barbaric terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Prime Minister Modi expressed his deep appreciation to Paraguay for its strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam, as well as for the sincere condolences and solidarity expressed with the people and the government of India. Both leaders unequivocally condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. On behalf of the Paraguayan people, President Peña expressed his deep solidarity with the victims and families.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में सम्मिलित होंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम कल शुरू हुआ था और इसका कल समापन होगा। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन उद्योग के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड को एक एम्बुलेंस भेंट की। डॉ मुरुगन ने आश्वासन दिया कि ये दिव्यांग लोगों की मदद के लिए हर संभव योगदान देंगे। देश भर में कोविड 19 के 3,960 से अधिक सक्रिय मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार केरल में सबसे अधिक 1,435 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 506 और दिल्ली में 483 मामले हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड यूनिट के प्रभारी डॉ पवन कुमार ने कहा कि अस्पताल कोविड मरीजों के प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार है।
Sir, RML is fully prepared for the management of the COVID patients. As we got news that number of patients are increasing and per the advisory of the government, we have upgraded the all the COVID areas. Now, as of now, there is a 9-bedded isolation center having all sort of things which a COVID patient requires.
राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने आज बिहार सरकार को मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में नोटिस जारी किया है। इस घटना को स्वयं संज्ञान में लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राकर ने 3 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। हमास ने गाजा संघर्ष विराम समझौते पर नई परोक्ष वार्ता तत्काल शुरू करने के प्रति अपनी इच्छा की घोषणा की है। यह घोषणा हमास ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के एक दिन बाद दी, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से अस्वीकार्य बताकर खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश को खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर गर्व है। 20वें सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में भारत के श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 1:48.61 का समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।